ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की होगी। लाओ की राजधानी वियेंचन में भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति पसंद राष्ट्र हैं और ये एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई भागों में मतभेद और तनाव है, ऐसे में भारत तथा आसियान में मित्रता, सहयोग, संवाद और साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और आसियान देशों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार पिछले 10 वर्षों में दोगुना होकर 13 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने तिमोर लेस्ते में नए वाणिज्य दूतावास खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर आसियान क्षेत्र का पहला देश है जिसके साथ भारत ने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की है। इससे पहले कि आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियेंचन पहुंचने पर लाओ के गृह मामलों के मंत्री विलाय वोंग बोदाखाम ने स्वागत किया। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लुआंग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर द्वारा लाओ रामायण, जिसे फलक फलम या फ्रालाक फ्रालाम कहा जाता है, की प्रस्तुति देखी। ये प्राचीन महाकाव्य रामायण का लाओ रूपांतरण है। प्रधानमंत्री ने लाओ के केंद्रीय बौद्ध फेलोशिप संगठन के बौद्ध भिक्षुओं के आशीर्वाद समारोह में भी भाग लिया। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज वर्ली स्थित शमशान घाट पर किया गया। इससे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर शाम 4:30 बजे तक राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा गया। उनका 86 वर्ष की उम्र में कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्योगों से अपना स्तर और आकार बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के उद्योगों को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें वैश्विक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए चैंबर्स और उद्योगों को एक साथ आने की जरूरत है। भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक लगभग 350 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। अगस्त 2024 के देश के व्यापार आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में तैयार कपड़ों में साल दर साल 11% की वृद्धि देखी गई है। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य कई योजनाओं और नीतिगत गतिविधियों का लाभ उठाकर इस लक्ष्य को हासिल करना है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 से 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान पार्क और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन जैसी योजनाओं से भारत के शीर्ष नेतृत्व की स्थिति हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों के लिए 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि जारी की। वित्त मंत्रालय के अनुसार आगामी त्योहारों और राज्यों के पूंजीगत व्यय में तेजी लाने तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रिम किस्त जारी की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पुदुचेरी के हिज्ब उत तहरीर से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभिकरण ने बताया कि उन्होंने राज्य के हिज्ब उत तहरीर के सरगना फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया है। हमीद हुसैन और उसके कई सहयोगियों ने चेन्नई में राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हुए अलगाववादी विचारधारा फैलाने की साजिश रची थी। देश भर में दुर्गा पूजा उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा समारोह में उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए राज्य के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। वहीं असम में इस वर्ष 4,000 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है। सेमीफाइनल में भारत को चीनी ताइपे ने 3-0 से हराया। इससे पहले भारतीय महिला टीम को भी कांस्य पदक मिला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।